नमस्कार भारत, आज है 13 जनवरी दिन शनिवार। सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। चीफ जस्टिस पर जजों के आरोपों के बाद सियासत शुरू, भाजपा बोली अदालत के अंदरूनी मामले सड़क पर न लाए कांग्रेस।
संविधान को ताक में रखकर जुडिशियरी के आंतरिक विषयों पर जब राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को ही भारत की जनता के सामने एक्सपोज करती है।
जजों ने मीडिया के सामने आकर न्यायपालिका को ठेस पहुंचाई या जनता की सेवा की, सुनेंगे प्रशांत भूषण को।
तो फिर क्या करते हैं, उन्होंने इंटरनली तो पूरी कोशिश कर ली, जब उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही तब फिर जनता को पता तो लगना चाहिए कि हो क्या रहा है।
खास बातचीत, रेप के विरोध में अपनी बच्ची को गोदी में बैठाकर कार्यक्रम करने वाली पाकिस्तानी एंकर किरण नाथ से। अखबारों की समीक्षा भी होगी लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफ्रीकी देशों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर अफ्रीकी यूनियन ने माफी की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी यूनियन मिशन ने बयान में अपना आक्रोश प्रकट किया है। अमरीकी राष्ट्रपति के बयान की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर ने भी निंदा की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों को लागू करने से फिर से मना कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो आखिरी बार ऐसी कोई छूट दे रहे हैं। वो अब चाहते हैं कि अमरीका और उसके यूरोपीय सहयोगी ऐसे आगे के समझौते पर काम करें जो ईरानियों पर नए प्रतिबंध लगाए। लेकिन जर्मनी ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के अभियान को जारी रखेगा और यूरोपीय सहयोगियों से आगे के एक आम रास्ते के लिए बात करेगा। ट्यूनीशिया सरकार के मंदी को लेकर जारी कार्यक्रम से गरीब परिवारों को जो बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है उस पर वहां के नेताओं का कहना है कि वो गरीबों की मदद करेंगे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी काइड एसएफसी और प्रधानमंत्री यूसुफ शाहिद ने कहा है कि निम्न आय वाले परिवारों की खरीद शक्ति बढ़ाने और मूल्य नियंत्रण पर काबू पाने पर उन्होंने चर्चा की है। वहीं सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर देश के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता खलीफा शिबानी का कहना है कि सुरक्षा बलों ने परिस्थिति को नियंत्रण में कर रखा है। कल हमने लूट या डकैती की कोई घटना नहीं दर्ज की, केवल कुछ प्रदर्शन हुए। इसका अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से शांति की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली रात को जो लोग घटनाओं में शामिल रहे हैं सुरक्षा बल उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। ये थे आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता खलीफा शिबानी के शब्द। सशस्त्र समूहों से लड़ने के लिए दो दशक में पहली बार कोलंबिया ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को संगठित किया है। फार्क विद्रोहियों के कब्जे वाले रहे देश के दक्षिणी हिस्सों में अब ये समूह नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल हैं। तथाकथित हरक्यूलिस टास्क फोर्स में 9,000 जवान होंगे जिनका लक्ष्य प्रशांत महासागर और इक्वाडोर से लगते देश की बड़ी सीमा पर दोबारा नियंत्रण प्राप्त करना होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी इराक में यजीदी समुदाय के लोगों ने इस्लामिक स्टेट द्वारा तबाह किए गए मंदिर का पुनर्निर्माण कर उसका दोबारा उद्घाटन किया है। बाशिका में इस मंदिर को 2014 में तबाह कर दिया गया था। आईएस द्वारा तबाह किए गए 68 यजीदी मंदिरों में से ये एक था। इस उद्घाटन को यजीदियों ने आशा की एक किरण बताया है। बाशिका शहर में बहजानी इलाके समेत 35 मंदिर थे जिसमें सभी तबाह कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद ईश्वर और शहर के अच्छे लोगों की मदद से जिनमें मुसलमान और ईसाई हैं उन्होंने हमारे मंदिरों को दोबारा बनाने में मदद की। ये थे एक यजीदी अली राशो के शब्द। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को स्टेडियम में स्टैंड में जाकर मैच देखने की अनुमति दी गई है जो कि एक इतिहास है। जिद्दा में सऊदी प्रोफेशनल लीग के में अल अहली और अल बातिम के बीच मैच को सऊदी महिलाओं द्वारा देखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग के बाद हाल के महीनों में सऊदी अरब ने महिलाओं को अतिरिक्त अधिकार दिए हैं। इससे पहले जद्दा में महिलाओं के लिए पहला कार शोरूम खोला गया था और जून से महिलाएँ कार चला सकेंगी। कनाडा में पुलिस 11 वर्षीय एक कन्या का कथित तौर पर कैंची से हिजाब काटे जाने को लेकर जांच कर रही है। कन्या का कहना है कि जब वो स्कूल जा रही थी तो पीछे से एक आदमी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो चिल्लाई। हमलावर पहले तो भाग खड़ा हुआ लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आया और इसका हिजाब काटने की कोशिश की। अफसरों ने हमलावर की पहचान तकरीबन 20 साल के एक एशियाई शख्स के रूप में की है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। कल सुबह 10:30 सुप्रीम कोर्ट में कामकाज रोज की तरह शुरू हुआ, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि घंटे भर बाद भारत की न्यायपालिका के सिस्टम में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के काम करने के तौर तरीकों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पत्रकारिता से लेकर सियासत तक के गलियारों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। फिर शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं और सियासी बयानबाजियों का सिलसिला। कल क्या कुछ हुआ बता रही हैं मानसी दास।
भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन बीते कल हुए इस संवाददाता सम्मेलन में जस्टिस 6 चिलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने कहा कि वो मजबूर होकर मीडिया के सामने आए हैं।
चूंकि हमारे सभी प्रयास बेकार हो गए, यहाँ तक कि आज सुबह भी हम चारों जाकर चीफ जस्टिस से मिले, उनसे आग्रह किया, लेकिन हम अपनी बात पर उन्हें सहमत नहीं करा सके। इसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैं नहीं चाहता कि 20 साल बाद इस देश का कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि चिलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने अपनी आत्मा बेच दी है।
इस संवाददाता सम्मेलन में जजों ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की ओर से पास हुए कुछ आदेशों को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना था कि इन आदेशों की वजह से न्यायपालिका के संचालन पर बुरा असर हुआ है। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में कहा गया है,
बड़ी नाराजगी और चिंता के साथ हमने ये सोचा कि ये पत्र आपके नाम लिखा जाए ताकि इस अदालत से जारी किए गए कुछ आदेशों को रेखांकित किया जा सके, जिन्होंने न्याय देने की पूरी कार्य प्रणाली और हाई कोर्ट्स की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तौर तरीकों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
इस संवाददाता सम्मेलन के बाद तो जैसे पूरे देश की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर ही जम गईं। इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर.एस. सोधी ने इसे अपरिपक्व और बचकाना व्यवहार बताया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी.बी. सावंत ने कहा कि इतना बड़ा कदम उठाने का मतलब है कि मामला बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के.टी.एस. तुलसी ने कहा कि चारों जजों के चेहरे पर उनकी वेदना साफ झलक रही थी। बीजेपी नेता और राज्यसभा में सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जजों ने जो कहा है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी ये सुनिश्चित करें कि चारों जज और चीफ जस्टिस में मतभेद ना हो। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने इसे न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन बताया। बाद में सीपीआई नेता डी राजा ने जस्टिस 6 चिलमेश्वर से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक मायने ना दिए जाएं, लेकिन इस पर राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर संवाददाता सम्मेलन कर इसे बेहद गंभीर मामला बताया।
जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
कुछ देर बाद भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।
आंतरिक विषय जो न्यायपालिका के होते हैं उनको सड़क पर लाके राजनीति करने का प्रयास जो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं वो अनुचित है। यह विषय न्यायपालिका का आंतरिक विषय है, अटॉर्नी जनरल ने अपना मंतव्य रखा है, इस पर किसी प्रकार का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अर्थात घरेलू राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, उनको आज चुनावी अवसर नहीं मिल रहा है, वैसे में कांग्रेस पार्टी वहां अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है जहां उसे ढूंढना नहीं चाहिए। संविधान को ताक में रखकर जुडिशियरी के आंतरिक विषयों पर जब राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को ही भारत की जनता के सामने एक्सपोज करती है और आज कांग्रेस पार्टी ने वो किया है।
दोपहर को अपुष खबरें आई थीं कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन पर लगाए आरोपों के मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से बात की। बाद में अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को एक दिन के भीतर सुलझा लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में आज एक बैठक होने वाली है जिसमें मतभेदों को पाटने की कोशिश की जाएगी। सभी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
इस रिपोर्ट में आपने सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जस्टिस लोया की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये मामला आखिर था क्या, बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
अंग्रेजी पत्रिका द कैरवान ने नवंबर के अपने अंक में एक खबर प्रकाशित कर बताया था कि सीबीआई की विशेष अदालत के जज बृजगोपाल हरकिशन लोया के परिजनों ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया है। लोया सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिस मामले में भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह अभियुक्त रहे हैं। अमित शाह को लोया की मृत्यु के बाद सीबीआई की विशेष अदालत के अगले जज ने बरी कर दिया था। बृजगोपाल की मौत 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2014 की दरमियानी रात को नागपुर में हुई थी। वो अपनी एक साथी जज की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए नागपुर गए थे। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई थी। द कैरवान पत्रिका को बृजगोपाल के परिजनों ने बताया था कि जस्टिस लोया की मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे ये मौत असामान्य लग रही है। परिजनों का कहना था कि उन्होंने डर के कारण इस पर इतने समय तक कुछ नहीं बोला था। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे जज का 2014 में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद लोया उनकी जगह इस मामले के जज बनाए गए थे। अंग्रेजी पत्रिका की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसमें जांच की मांग की थी। वहीं एक इंटरव्यू में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुद ये निर्णय करना होगा कि इस मामले में जांच की जरूरत है या नहीं, क्योंकि इन आरोपों की जांच न हुई तो न्यायपालिका पर कलंक लग जाएगा। जस्टिस लोया की मौत की जांच को लेकर मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार शुक्रवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और एमएम शांतनागोदर की पीठ ने जस्टिस लोया की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है।
इन चारों जजों ने कल मीडिया से 7-8 मिनट तक बात की। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चले, तो जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि ये देश को तय करना है। लगभग ऐसी ही बात 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कही थी। बीते साल नवंबर में प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चूंकि इस मामले के केस दीपक मिश्रा की अदालत में चले हैं, ऐसे में उन्हें इससे अलग हो जाना चाहिए। ये कहकर वो कोर्ट रूम से बाहर चले आए थे। इसके बाद बीबीसी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुनिए।
अब हम लोग को देखना होगा कि इसमें उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए या कोई इन हाउस प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए चीफ जस्टिस के खिलाफ या क्या होना चाहिए, इस पर हमको सोचना होगा। मतलब तो मामला इस केस से और ज्यादा गंभीर हो गया है।
कल के घटनाक्रम के बाद हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली ने फिर प्रशांत भूषण से संपर्क किया और पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मीडिया के सामने आना पड़ा।
नहीं, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड स्थिति बन गई थी कि जहां चीफ जस्टिस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मास्टर ऑफ रोस्टर जिसको कहते हैं कि वो बेंचेस असाइन करते हैं, उस पावर का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था, खासकर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में। इन जजों ने पहले तो चिट्ठी लिखी 2 महीने पहले चीफ जस्टिस को कि भाई ये गलत बात है, आपको बेंच असाइन करने की पावर जरूर है, लेकिन आप इस तरह से आर्बिट्ररी तरीके से इम्पोर्टेंट चुनिंदा केसेस को इस तरह से खास जजेस के यहाँ नहीं भेज सकते, खासकर जूनियर जजेस के यहाँ। लेकिन जब वो फिर भी चलता रहा दुरुपयोग, तो उन्होंने ओरली उसको रेस किया चीफ जस्टिस से। तो ऐसे केस में जब पानी नाक के ऊपर निकल गया, तब इन जजेस को ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का, जिससे जनता को पता तो लगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरह से पूरी न्यायपालिका को सबवर्ट किया जा रहा है।
और प्रशांत जी, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि चाहे कितना भी दबाव रहा हो इन जजों के ऊपर, पब्लिक के सामने जाना जो है शायद उचित नहीं था।
तो फिर क्या करते, उन्होंने इंटरनली तो पूरी कोशिश कर ली, जब उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही, तब फिर जनता को पता तो लगना चाहिए कि हो क्या रहा है, जिससे कि उसके बाद फिर जनता को जो करना हो, आखिर किसी भी लोकतंत्र में जनता असली मालिक होती है।
प्रशांत जी, लेकिन एक बात है कि इससे क्या चीफ जस्टिस की जो ऑफिस है या उनका जो पोजीशन है उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंची है, और लोगों का इतना बड़ा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, वो कहीं ना कहीं इससे उसका उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, वो कम तो नहीं होगा?
जब भी कोई करप्शन भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है तो जिसके खिलाफ भी मुद्दा सामने आता है उसके डिग्निटी पर ठेस तो पहुंचती है। लेकिन अगर हमको सिस्टम को ठीक करना है, अगर जिस तरह से दुरुपयोग चल रहा है अगर उसको रोकना है तो ये मामला तो बाहर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ठीक कैसे होगा? फिर तो ये है कि भाई हम बस ये सोचें कि भाई हमारा फेथ रहे, चाहे वो न्यायपालिका बिल्कुल चरमरा गई हो, बिल्कुल बेईमानी से चलाई जा रही हो।
तो ये बताइए कि अब जो है वो चीफ जस्टिस के पास क्या रास्ता है, क्या कर सकते हैं वो फिलहाल?
या तो वो ठीक करें, तुरंत एक बिल्कुल पारदर्शी और रैशनल तरीका बनाएं बेंचेस असाइन करने का। ये नहीं कि भाई जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं वो मेरे सामने रखो और मैं तय करूंगा कहाँ भेजा जाए, मैं चुन चुन के ऐसी जगह भेजूंगा जहां मुझे लगता है कि ये आउटकम हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह से नहीं चल सकता।
इन चीफ जस्टिस के रेजीम का ये खास बात है या एक ये पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं?
ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन इस स्तर पर और इतना ब्रेजनली मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। मैं तो 34 साल से सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ, 35 साल से, लेकिन इस तरह का ब्रेजन अब्यूज ऑफ पावर चीफ जस्टिस का मैंने नहीं देखा।
इसको आखिरकार ये रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इसमें सुधार हो जाए और आगे इसकी गुंजाइश खत्म हो?
तो एक तो जो चीफ जस्टिस की पावर है मास्टर ऑफ रोस्टर, उसके बिल्कुल क्लियर रूल्स होने चाहिए कि वो तो बस सब्जेक्ट वाइज बेंचेस बना सकते हैं, और उसके बाद और वो भी बिल्कुल एक रैशनल तरीका होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए।
ये थे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। अब लगे हाथ दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर एक नज़र डाल लेते हैं जो जाहिरन इस भूचाल की खबर से पटे हुए हैं। मोहम्मद शाहिद स्टूडियो में मौजूद हैं, बताएं अखबारों का हाल।
जी बिल्कुल कुलदीप, हर किसी अखबार के पहले पन्ने पर यही खबर है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है देयर लॉर्डशिप ऑब्जेक्ट, हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है सुप्रीम बैटल, जनसत्ता शीर्षक देता है इंसाफ के घर में नहीं सुनवाई, और दैनिक जागरण लिखता है कि सीजेआई के खिलाफ 4 जजों का विद्रोह, बोले सुप्रीम कोर्ट सब ठीक नहीं, लोकतंत्र खतरे में। इसके अलावा दैनिक भास्कर लिखता है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया से कहा चीफ जस्टिस पसंद की बेंचों में भेजते हैं केस। इसी के साथ ही दैनिक भास्कर में ही लिखा है कि ये जजों ने 20 मीडिया से 20 मिनट की बातचीत की, 2 जज बोले, 2 चुप ही रहे। और टाइम्स ऑफ इंडिया ही हेडिंग देता है 4 टॉप जजेस रिवोल्ट अगेंस्ट सीजेआई, तो ये खबर तो हर कहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और खबर है, कल थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी खबर को टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि रसायन और परमाणु हथियारों का खतरा वास्तविकता बन रहा है, जो जनरल बिपिन रावत ने कहा है। इसके अलावा
इसी खबर को अमर उजाला ने इस तरीके से छापा है कि जनरल बिपिन रावत ने कहा है चीन ताकतवर देश तो भारत भी कमजोर नहीं, उन्होंने इस शीर्षक से अमर उजाला ने इस खबर को छापा है।
इसी खबर में मैं बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है सेना प्रमुख का विचार है कि पाक से जो है वह ध्यान केंद्रित अब चीन की ओर करना चाहिए भारत को। एक खबर मैं बता दूं द हिंदू के पहले पन्ने पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से ये खबर है कि लाल किले हमले के अभियुक्त के कोई आतंकी रिकॉर्ड नहीं है, तो उन्होंने इसके हवाले से खबर दी है। इसके अलावा जनसत्ता के पहले पन्ने पे खबर जो हमने न्याय दी सीबीआई के लोया पे हमने बात की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत गंभीर मुद्दा है। और इसी के अलावा जनसत्ता पे ये खबर है कि बक्सर में नीतीश कुमार के काफिले पर हुआ पथराव, ये हेडिंग है।
एक खबर मैं अमर उजाला से बता दूं, छोटी सी खबर है, महंगाई दर बढ़कर 5.21% हो गई है, तो आम बजट से ठीक पहले महंगाई ने सरकार को बड़ा झटका दिया है, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। दिसंबर 2017 में खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तर को पार करके 5.21% पहुंच गई है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की आस धूमिल हो गई।
चलिए, ये धूमिल आपने महंगाई की बात की तो मैं अब इसमें थोड़ा आईएसडी कॉल को लेकर थोड़ा सस्ती दरों की बात कर लेते हैं। दूर संचार नियामक ट्राई ने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल की टर्मिनेशन शुल्क को 53 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 30 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया है, तो जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉल करते हैं उनके लिए फरवरी से जो है अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा कार्टोसेट 2 जो कल इसरो ने अपना एक और नया लॉन्च किया 100वां उपग्रह, तो उस पर हिंदुस्तान लिखता है कि कार्टोसेट 2 की चीन और पाक पर नज़र रहेगी,
उस पर। इसके अलावा अब आते हैं फिल्मों पर। पद्मावत को लेकर गुजरात में रोक लगा दी गई है, गुजरात सरकार ने मना कर दिया है, और एमपी और यूपी को भी लेकर इसी तरीके की बातें की गई हैं कि नहीं दिखाएंगे शायद।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद, अखबारों की समीक्षा के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
न्यायपालिका से भरोसा उठा तो क्या बच पाएगा लोकतंत्र? सुप्रीम कोर्ट के चार बड़े जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में छिड़ गई है बहस। कैसे उबरेगी न्यायपालिका इस संकट से? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी देशों के लिए कथित तौर पर अभद्र और नस्लीय शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। आरोप है कि उन्होंने अमरीकी आप्रवासन नीति पर एक बैठक में कथित तौर पर अफ्रीकी देशों के लिए एक नस्लीय टिप्पणी की थी। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। अफ्रीकी देशों के संगठन ने माफी मांगने के लिए कहा है। ब्यौरा सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार यह सवाल पूछ रही थी कि क्या आप नस्लभेदी हैं। अमरीकी राष्ट्रपति से पत्रकार ने आगे पूछा, क्या वो अपने द्वारा दिए गए बयान पर इन गंभीर सवालों पर प्रतिक्रिया देंगे। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि ओवल दफ्तर में आव्रजन नीति पर एक बैठक के दौरान उन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने अमरीका आने वाले अफ्रीकी महाद्वीप, हेती और एल सल्वाडोर जैसे देशों के लिए एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि ट्रंप ने इस बात को खारिज किया है, लेकिन उस बैठक में मौजूद होने का दावा करने वाले डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन कहते हैं, उन्होंने कहा था, क्या हम और हेती के लोग चाहते हैं? फिर वो शुरू हो गए। हमने अफ्रीका से आव्रजन के बारे में बताना शुरू किया कि ये द्विदलीय उपाय द्वारा संरक्षित है। इसके बाद उन्होंने घिनौनी और अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने इन देशों को शिट होल्स कहा, और इस शब्द को राष्ट्रपति ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तेमाल किया। ये थे डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति की कथित टिप्पणी की काफी आलोचना हो रही है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना की विदेश मंत्री पेलो नोमी वेंसन मोइतोई ने भी इसकी निंदा की है। ये आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द नहीं है। यह ऐसा शब्द नहीं है जिसे राष्ट्रपति को इस्तेमाल करना चाहिए। हम जानते हैं कि यह अमरीकी कांग्रेस नहीं है जिसने इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए अधिकार दिया है, और यही कारण है कि हम सावधानी से एक कदम रख रहे हैं। ये थे बोत्सवाना की विदेश मंत्री पेलो नोमी वेंसन मोइतोई के शब्द। इस पूरे विवाद को थामने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था। वहीं कल नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अपनी बहादुरी और बलिदान से डॉक्टर किंग ने देश की आंखें खोली और उसे आगे बढ़ाया। आज हम डॉक्टर किंग को याद कर रहे हैं जो अमरीकी लोगों के दिल के करीब उस स्वतः स्पष्ट सत्य के लिए खड़े हुए कि हमारी त्वचा का रंग और हमारा जन्म स्थान चाहे जो हो, हम सभी को ईश्वर ने बराबर बनाया है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ट्रंप के इस बयान को उनकी कथित अभद्र टिप्पणी पर एक मरहम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कथित अभद्र टिप्पणी और उनके रवैये को लेकर एक बार फिर से विवाद जरूर छिड़ गया है।
मोहम्मद शाहिद से ब्यौरा सुन रहे थे आप। श्रोताओं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कसूर जिले में 6 साल की जैनब अंसारी के बलात्कार और हत्या से पूरा देश गुस्से में है, और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक न्याय की मांग लोग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच एक निजी समाचार चैनल की एंकर किरण नाज अलहदा अंदाज में इसका विरोध करके सुर्खियों में आ गई हैं। गुरुवार को अपने बुलेटिन में वो अपनी बच्ची को लेकर आईं और उसे गोद में बैठा कर जैनब से जुड़ी खबरें दीं। सुनिए हमारी सहयोगी शुमाइला जाफरी से बात करते हुए किरण नाज ने क्या कहा।
मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं सोचती रही, मैं रात भर सो नहीं सकी। जब मैं अपनी बेटी की तरफ चेहरा करती थी तो मुझे उसकी आंखों में अपनी बेटी की आंखें नजर आ रही थी, मुझे जैनब का चेहरा अपनी बेटी के चेहरे में नजर आ रहा था। और फिर जब मैं अगले दिन ऑफिस गई, जिस दिन ये शो किया है मैंने, उस दिन जैनब की वालिदा वापस आ रही थी उमरे से, और जो उनकी कंडीशन मैंने देखी, सिर्फ कुछ लम्हात लगे मुझे ये सोचने में कि खुदा ना खास्ता अगर इस जगह मैं होती तो ये तो फिर भी चल पा रही हैं, बात कर पा रही हैं, मैं तो शायद कुछ भी नहीं कर पाती। और मैंने उस दर्द को महसूस किया, और ये दर्द था जो मैंने फील किया, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर आई और मैं बताना चाहती थी लोगों को कि मेरी बेटी मेरा फखर है, आप हमारे फखर के साथ ये करेंगे, आप हमारे फखर के साथ उन्हें रेप करेंगे, आप उन्हें कचरे में फेंकेंगे, हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम इंसान हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हमारा फखर हैं। तो मैं अपने फखर के साथ बैठी थी जैनब के लिए आवाज उठाने के लिए, और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद शायद मैं थोड़ी बहुत कामयाब हुई हूँ कि आप लोग मुझसे बात करें और काफी सारे लोग मुझसे बात करें। अपने हमें ये मशवरा दे दिया जाता है कि जी आप अपने बच्चों को सिखाएं, आप अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं अपनी 6 महीने की बेटी को कैसे बताऊं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? लोगों के पास या यकीनन इंडिया के पास या बहुत सारी दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास अब इतना दिल नहीं बचा है कि वो रोजाना ऐसे वाकयात देखते रहें, रोजाना अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाएं और वो कब्रों में दफन कर रहे हैं और सिर्फ ये सोच के रह जाएं कि शायद शायद वो जालिम, वो खबीस इंसान पकड़ा जाएगा। तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर निकले हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि जिस तरह से इंडिया इस मामले को हाईलाइट कर रहा है और इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हो रहा है, ये सरहद के उस पार आपके मुल्क में हो रहा है, बस अब इसे खत्म होना चाहिए।
पाकिस्तानी एंकर किरण नाज को सुन रहे थे आप। अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज से शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भारत के लिए करो या मरो का है। केप टाउन में हुए पहले टेस्ट में भारत 72 रन से हारा था, ऐसे में दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों को पिच की उछाल और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण का बेहतर ढंग से सामना करना होगा। आज होने वाले मैच पर बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय दहिया।
अगर सीमिंग कंडीशन रहेंगी, उनका इम्तिहान होगा तो हमारा भी इम्तिहान होगा। देखिए, दोनों टीमों के पास आप नजर डालेंगे तो 20 विकेट लेने की काबिलियत उन कंडीशंस के अंदर है, बिल्कुल है। अब सारा दारोमदार आ जाता है बैटिंग के ऊपर। जिस बैटिंग को हम जब घर पे खेलते हैं तो हम अपनी ताकत मानते हैं, उस बैटिंग को खड़ा होना पड़ेगा। उस बैटिंग के अंदर से किसी को रीढ़ की हड्डी बनना पड़ेगा, किसी को एक बहुत ही इस तरीके की पारी खेलनी पड़ेगी कि एक आत्मविश्वास आपका इस तरीके से, क्योंकि जब आप 200 चेज कर रहे हो और वहां भी आपका 60-70 रन से हार जाए तो फिर आपका थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है कि क्या 350 बनाने पड़े तो हम बना लेंगे। तो इसलिए वो जरूरी है कि कोई बहुत बढ़िया पारी कप्तान खेले और वो विश्वास वापस नजर आए।
इसके साथ ही लगातार 9 सीरीज जीतने का भारत का रिकॉर्ड आज दांव पर होगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी टीम अगर सीरीज में क्लीन स्वीप करने में सफल होती है तो भी भारत की नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं ICC Under-19 वर्ल्ड कप के 12वें टूर्नामेंट का आयोजन आज से न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 14 जनवरी को खेलेगा। न्यूजीलैंड के साथ अलग अलग स्टेडियम में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये प्रतियोगिता 22 दिनों तक चलेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल 3 फरवरी को खेला जाएगा। टूर्नामेंट की 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत के ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और पपुआ न्यू गिनी जैसी टीमें हैं। 2016 में भारत ने वेस्टइंडीज को ये खिताब गंवा दिया था, लेकिन वो 3 बार Under-19 वर्ल्ड कप जीत चुका है। साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत ने पहला Under-19 वर्ल्ड कप जीता था। 2008 में विराट कोहली ने भारत को दूसरी बार चैंपियन बनाया। इसके बाद साल 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत विजेता बना। इस बार टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी पृथ्वी शॉ कर रहे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफ्रीकी देशों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर अफ्रीकी यूनियन ने माफी की मांग की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों को लागू करने से फिर से मना कर दिया है। ट्यूनिशिया सरकार की मंदी को लेकर जारी कार्यक्रम से गरीब परिवारों को जो बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है उस पर वहां के नेताओं का कहना है कि वो गरीबों की मदद करेंगे। सशस्त्र समूहों से लड़ने के लिए 2 दशक में पहली बार कोलंबिया ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को संगठित किया है। उत्तरी इराक में यजीदी समुदाय के लोगों ने इस्लामिक स्टेट द्वारा तबाह किए गए मंदिर का पुनर्निर्माण कर उसका दोबारा उद्घाटन किया है। वाशिका में इस मंदिर को 2014 में तबाह कर दिया गया था। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को स्टेडियम में स्टैंड में जाकर मैच देखने की अनुमति दी गई है, जो कि एक इतिहास है। जद्दा में सऊदी प्रोफेशनल लीग में इस मैच को
महिलाओं द्वारा देखा गया। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिजीत श्रीवास्तव ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।